जी
नमस्कार सभी हमारे वॉइस मीडिया चैनल के श्रोताओं को। और आज हमारे साथ जो है फतेह अली साहब है, जो नालंदा जिला से हैं। ये लोगों को अभी के कोरोना महामारी के समय, ये दूसरी लहर हमारे बिहार में जो त्रासदी मचाए हुए है, इसमें क्योंकि हम लोग पहले से, 1 साल पहले से ही इस कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, लेकिन अभी जो दूसरी लहर हमारे साथ, हम लोगों के बीच और बिहार में खास करके जो तांडव मचाए हुए कोरोना महामारी का, अब तो पहले शहर गए और गांव गांव में, अब कस्बे कस्बे में जाने कोरोना का एक मंजर देखने को मिलता है। ऐसे में फतेह अली साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने नालंदा जिला में जो अपने आप को जो अंजाम, काम का अंजाम दे रहे हैं, वैसे लोगों की मजबूरी और हालत में ऑक्सीजन का जो लोगों को सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए लोगों का एक मसीहा बन के सामने उभरे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ किस किस तरह के लोग आते हैं और इनका काम किस तरह से बखूबी इंसानों को जिंदगी देने का जो मुहिम है, प्रयास है, इसमें इनका क्या अहम रोल है। आज हम आप लोगों को इनसे रूबरू कराते हैं। फतेह अली साहब, आपको इस वॉइस मीडिया चैनल में स्वागत है। जी
जी, अस्सलाम वालेकुम। और
वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपने सभी हमारे जो वॉइस मीडिया चैनल को सुनने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश और ये रहेगी कि आप जितनी बात, मतलब ये एकदम नजदीकी बात है कि कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की एक बड़ा सा गबन कटिहार में या बाकी और जगह जो दिखाया जा रहा था, उससे आप कैसे, पहले तो हम जानेंगे कि कैसे लोग आपके नजदीक आते हैं और कैसे इस चीज को आपने सिलेक्शन किया कि ऐसा मैं काम करूं।
देखिए, मैं बिहार SDPI से, नालंदा जिला से जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे हूँ और हम लोग लगातार सोशल वर्क में लगे रहे हैं, कोरोना काल से नहीं, उससे पहले भी। लेकिन जब कोरोना काल, जब पिछले साल से ये शुरू हुआ, तब से हम लोग पिछले जो लहर की फर्स्ट फेज जो था, उस वक्त तो इस तरह का मेडिकल क्राइसिस नहीं देखने को मिला। उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ जो है ज्यादातर काम जो हुआ वो फाइनेंशियली लोग जो है परेशान थे, उन लोगों को अनाज बांटने का काम हुआ। लेकिन अभी जो ये सेकंड फेज आया है और बहुत भयावह मेडिकल क्राइसिस हम लोग को यहाँ पर देखने को लगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो चीजों की कमी, यानी कि मरीज जिस क्वांटिटी में है उस क्वांटिटी में शायद हम कभी तैयार ही नहीं थे कि हमें इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलेगा। और जो भी हमारा स्ट्रक्चर, हेल्थ स्ट्रक्चर जो था, जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल एकदम चरमरा गया। यहाँ तक की स्थिति ये हो गई कि लोग जो है हॉस्पिटल जाना ही पसंद नहीं करने लगे, और या फिर वहां पर जाकर के वहां पे फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और इंजेक्शन तक नहीं है, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है घर पर ही अपना इलाज करवा रहे थे, जिनको जो चीजें हम मुहैया करा सकते थे, हम लोगों ने, हमारी टीम ने उन चीजों को मुहैया कराने की कोशिश की है। यहाँ सिचुएशन जो जमीनी स्तर पे वो ये है कि नालंदा जिला में एक के प्लांट है ऑक्सीजन का, केरा बगीचा के पास में, लेकिन वो प्लांट यहाँ पे, ये मतलब है यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। बंगाल से या कई दूसरे जगहों से यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, वो बड़े वाले टैंकर में यहाँ रखाता है, उसके बाद लोकल हॉस्पिटल पटना तक, नवादा तक, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ से सप्लाई की जाती है। तो गवर्नमेंट के सामने ये भी एक चैलेंज था कि इसकी काला बाजारी ना हो। तो स्टार्टिंग में इसका प्रॉब्लम, अगर आज से 15 दिन पहले की बात की जाए, तो उस वक्त बहुत स्थिति भयावह थी। तो हम लोगों ने जो देखा, क्योंकि समाज से जुड़े हुए लोग, हमारी टीम जो है समाज से जुड़ी रही है, तो जब ये चीजें आई तो लोगों का कॉल आया, लोगों ने अपनी परेशानी को हमारे साथ शेयर किया। और हम लोगों का ये दायित्व था कि जब हम पब्लिक के बीच में हैं तो हमें उसके लिए काम करना था। हम लोगों ने जैसे तैसे किसी भी तरह से सिलेंडर मुहैया कराया, किया सबसे पहले, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा लोगों का, जो जहाँ भी बिल्डिंग का, जो हमारे पास पड़ोस में जो काम करते थे लोग, उन लोगों से हम लोगों ने सिलेंडर लिया, क्योंकि उन लॉकडाउन की वजह से उनका काम भी बंद था, तो उन लोगों ने सिलेंडर हम लोगों को दे दिया। फिर हम लोगों ने कुछ परचेसेस भी किए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर कालाबाजारी भी देखने को मिली कि जो चीज बहुत कम कॉस्ट का, उसको बहुत जो है कॉस्ट को बढ़ा करके बेचा जाने लगा। लेकिन क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी, और जिस क्वांटिटी में जरूरत थी उस क्वांटिटी में सामान मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने उसको जो है लोगों के घर घर जा करके वहां पर कहीं भी अगर मरीज है तो हम लोगों ने फिर उसके बाद अपना कॉल नंबर भी लोगों को इशू किया, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी ये आ रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे किनसे कॉन्टेक्ट करें, किनसे हेल्प लें। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो है कॉल नंबर जो है सबको मुहैया कराया। तो रात में 2 बजे 1 बजे कभी भी कॉल आता है, हम लोग उस वक्त हमारी टीम जो है तैयार रहती है। और हम लोगों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, रेगुलेटर, ये सारी चीजें अवेलेबल करवा करके रखी है। कहीं भी जरूरत होता है, किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म के लोगों को, किसी को भी, अमीर हो गरीब हो, वहां पर पहले हमारी प्राथमिकता ये होती है कि पहले मरीज तक हम जो है वहां पर उन चीजों को, वो जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको वहां पे मुहैया कराते हैं। हाँ, अभी कुछ हालात में ये सुधार आया है। सुधार क्या बोलेंगे कि ये है कि चीजें मिल जा रही है अब, लेकिन 15 दिन पहले जो स्थिति थी, लोगों के डेथ रेट भी काफी हाई हो गए, बहुत लोगों की जाने जा रही थी। हम लोगों ने वो स्थिति भी देखी है कि लोग चीजों की कमी से बहुत सारे लोगों की जाने रही है।
जी, तो अभी तक कितने लोगों के आपके द्वारा, आपके टीम के द्वारा मदद किया गया है, एक अमूमन अंदाजा?
मैं कहूंगा कि ये मदद नहीं है, ये हमारा दायित्व था और जिसको हम लोगों ने निर्वहन किया है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है, मैं तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन लगभग 200 से 250 के बीच में मरीजों तक हम पहुंचे हैं, जहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर मुहैया कराई है।
जी, तो कुछ ऐसे भी मरीज आपके पास आए होंगे जी जो निहत्थे हैं और पूरे लाचार होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आई है। ऐसे बहुत सारे मरीज थे जो कि बिल्कुल फाइनेंशियल भी एकदम टूटे हुए थे, वो आना नहीं चाह रहे थे हम लोगों के पास, क्योंकि वो सिर्फ मतलब इस तरह की स्थिति कि वो किसी से बोले भी तो क्या बोले। तो ऐसी जगह पे जब हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने खुद से वहां पर गए, जिन लोगों को अगर हम लोग गवर्नमेंट से कोई हेल्प करवा सकते थे, हम लोगों ने हॉस्पिटल में वहां पर लोगों को एडमिट भी करवाया, वहां पर जो इलाज करवा सकते थे वो चीजें भी हुई। बहुत सारे ऐसे भी मसला आया कि लोग हॉस्पिटल में किसी की जान चली गई है और बाहर उनके बॉडी को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें भी हम लोगों ने डील की है हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके, क्योंकि वहां पर भी देखने को मिला है कि हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस थोड़ी सी दूरी के लिए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी के लिए जो है 7,000 8,000 10,000 चार्जेस कर रहा है। तो उनसे बात करके हम लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों के हेल्प की है, जिनको कम कीमत पे भी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो एक्चुअल जो रेट होता है उस रेट पर उनको मुहैया कराया। कुछ ऐसे गरीब लोग थे जो बिल्कुल भी लाचार थे, तो उनसे हम लोगों ने पूरा फी ही नहीं लिया है, और जो भी ऑक्सीजन मुहैया कराना हो या दवाई का खर्च हो, वो हम लोगों ने डोनेशन के पैसे से हम लोगों ने उसको किया।
जी, अभी अभी जो हालतें बन रही हैं उसमें आपको क्या अमूमन अंदाजा लग रहा है कि कोरोना का जो अभी हालत, अब तो गांव के तरफ कोरोना का ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां जितनी जल्दी जांच हो रही है उतनी ही ज्यादा भयानक स्थिति पैदा हो रहा है, तो इसमें आपको आने वाले, क्योंकि आप ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं सभी लोगों को, तो अमूमन आपको क्या अंदाजा लगता है कि ये किस टाइप का और कैसे किस तरह से ये विस्तार रूप ले रहा है और क्या होगा?
मैं आपसे 2 बातें इसके बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है तो ये है कि ये जो सेकंड फेज आया है कोरोना का, इस सेकंड फेज ने हम लोगों को ये बता दिया है कि हमारी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है ना, ये हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, छोटे शहरों में ये सिर्फ नाम मात्र है, गांव में हमारा कोई हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं था। ये हम लोगों को इसके बारे में एक्नॉलेज करवाया गया है इस कोरोना के सेकंड फेज में। और दूसरी बात मैं ये भी आपको कहूंगा कि आप सहाफी हैं, आप जो मीडिया के लाइन से जुड़े हुए हैं, और आप जिस तरीके के मुझसे सवाल कर रहे हैं, अभी हालात ये है कि आप अगर सच को बोलने बोले, सच सही सवाल करें या मुझसे सही जवाब अगर आप सुनना चाहें, तो एक प्रशासन का भी एक दबाव रहता है आप पैनिक फैला कर कुछ भी वो जोड़ सकते हैं आपके साथ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर थर्ड फेज है कहीं जो कि सुनने में आ रहा है, जो लोग भी इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर थर्ड फेज है तो वो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। क्योंकि जब हम सेकंड फेज में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और जब इससे पहले जो पिछले साल तक तो कोरोना था, जो बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिला, गांव तक वो चीजें नहीं फैली थी, तो अब अगर गांव तक के जो कोरोना फैल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कोरोना से तो कम, लेकिन जो है इलाज बिल्कुल ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा लोगों की जाने जो जाने वाले। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो एक बात हो जाएगी कि मैं पैनिक फैला रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि बिल्कुल इसमें, हाँ अभी ये वक्त है हम लोगों के पास, थोड़ा सा हम लोग अगर 15 दिन पहले की बात करें तो बहुत भयावह स्थिति, अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा वक्त मिला है कि अभी भी हम लोग धर्म के ऊपर उठ करके, इंसानियत को सामने रख करके, अगर हम अभी भी ये सोच लें नेतागिरी खत्म करके, अगर हम लोग अभी भी जो लोग जो घुसखोरी कर रहे हैं और जो करप्शन अभी भी सामने में आ रहा है, लोगों के यहाँ एम्बुलेंस पकड़े जा रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं कि स्थिति क्या भयावह होने वाली है, तो मैं अपने यहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ही रखे रहूं, और अगर मेरे पड़ोसी में जरूरत है और मैं उसको नहीं दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी स्थिति क्या होने वाली है, अगर ये सिचुएशन रहा तो बहुत लोगों की जान जाने वाली है। हम लोगों को इंसानियत के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अगर हम ये नहीं करेंगे और अगर हम कोरोना से सिर्फ डरेंगे और लड़ेंगे नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वक्त है कोरोना से लड़ने का, डरने का नहीं, अगर हम लोग डरेंगे तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल भी आज तक तैयार नहीं थे, लेकिन अभी भी अगर हमारे पास जो वक्त है हम उसमें सही डायरेक्शन में अगर तैयारी नहीं करेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे।
जी, तो यहाँ पे एक चीज और हम लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे कि इसमें जो अभी समय है, क्या लोगों में ऑक्सीजन सिलेंडर या इलाज कराने को लेकर के हॉस्पिटल जाना मुनासिब समझते हैं या नहीं?
देखिए दोनों ही सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति ये है कि हॉस्पिटल जाने के बाद जिस क्वांटिटी में स्टाफ होने चाहिए या जो स्टाफ का जो रवैया होना चाहिए वो हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसी तस्वीरें देखने में आ रही है कि डॉक्टर है वो दवा फेंक के मरीज को दे रहे हैं, जो स्टाफ है वहां के, और सही से वेंटिलेशन नहीं है। मैंने आज से 1 साल पहले भी ये सवाल यहाँ के जो विधायक हैं उनसे ये सवाल रखा था कि जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 1,000 वेंटिलेटर का नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया था, उस पे एक भी वेंटिलेशन केंद्र से हम लोगों को नहीं मिला है। तो जब बीच में यहाँ इलेक्शन आया तो ऐसी चीजों पे यहाँ सवाल नहीं हुई, बल्कि हमारे बिहार शरीफ के जो विधायक रहे उन्होंने जो है सिर्फ चंदा करने का काम किया, मंदिर के लिए चंदा करने का काम किया, कभी उन्होंने हॉस्पिटल के लिए, आज तक भी वो जो है कभी जाकर यहाँ लोकल हॉस्पिटल में ये नहीं देखने गए कि क्या स्थिति है, बल्कि वो जनता के प्रतिनिधि चुने जाने के बावजूद वो खुद जो है क्वारंटाइन रहे और लोगों से दूरी, बिल्कुल लोगों से दूरी बना करके जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि थे, आपको जिस तरीके से मैदान में आना चाहिए लोगों के साथ वो रवैया नहीं उन्होंने रखा। और हॉस्पिटल क्या कहूँ, घर पर भी अगर है तो घर पर मैं कहूँगा कि थोड़ा ज्यादा ही अच्छा इलाज, अगर जो लोग सक्षम हैं तो वो लोग घर पर ज्यादा अच्छा इलाज कर रहे हैं। अभी मेरे जानकारी में कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर रह करके रिकवर हुए हैं काफी बेहतर, 1 हफ्ता दिन में या 15 दिन में लोग रिकवर घर पर भी हुए हैं, और वो सारी दवाइयों के साथ और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके अगर घर में इलाज करा सकते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि घर पर रह करके भी आप इलाज करा सकते हैं, क्योंकि स्थिति हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी नहीं है, होना चाहिए लेकिन है नहीं हॉस्पिटल में।
जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर कुछ अहम जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अब दीजिए मुझे इजाजत, और फिर हम आपको इनसे हम मुलाकात करवाएंगे, कुछ और जानकारी जो आप लोगों को रूबरू होंगे फतेह अली भाई से, जो कि एक नालंदा के ये ऑक्सीजन के मातहत ये पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, और आपने सुना ही होगा कि अभी इन्होंने ये पूरी जानकारी पूरा नालंदा में जो सिचुएशन और हालात हैं उसके बारे में आपको रूबरू कराया है। सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
जी, शुक्रिया।